आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हर साल राखी का त्योहार विश्व भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन विदेशों में रहने वाले कई लोग इस खास मौके पर अपने भाई बहनों, परिवार सबसे दूर होते हैं। ऐसे में वे भारत से भेजी जाने वाली राखी की डाक और पार्सल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में इस राखी के पार्सल को लेकर किसी प्रकार के कुछ नियम हैं?
ऑस्ट्रेलियाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री
राखी के पार्सल को लेकर परिवारों को कुछ अहम सावधानियां बरतने की सलाह देता है। तो राखी के पार्सल में कौन सी चीजें भेजना अनुमत है और कौन सी नहीं, इसकी जानकारी आपको इस अंश में इस विभाग के एक अधिकारी देंगे। लेकिन उससे पहले सिडनी में रहने वाले अंकुर के साथ इस साल राखी के पार्सल को लेकर क्या हुआ, आइए सुनते हैं अंकुर से। आपको बता दें, ये रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। इस भाग में सुनिए अंकुर की आप बीती और अगले एपिसोड में हम
इस विभाग से जुड़े
डॉक्टर अजय निरंजन के साथ सभी जरूरी नियमों और जानकारियों को साझा करेंगे।
हाँ जी, मेरा नाम है अंकुर सचदेवा और मैं मध्य प्रदेश इंडिया से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ पर 4 साल से हूँ। तो मेरी दीदी का इंडिया से वीडियो कॉल आया था, उन्होंने बोला कि उनको राखी डिलीवर दिखा रहा है और उनको लग रहा था कि राखी टाइम पर डिलीवर हो जाए एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड। तो उनका वीडियो कॉल था, तो मैंने सोचा कि उन्होंने बोला कि प्लीज जाके चेक करो, क्योंकि उन्हें राखी डिलीवर दिखा रही थी। तो मैं गया, मैंने देखा तो राखी डिलीवर हो गई थी और उसके साथ 3-4 और कोरियर डिलीवर हुए थे। तो वो वीडियो कॉल पे ही थी, तो मैंने उनको खोल के दिखाई। तो मैंने बोला था कि राखी तो बहुत सुंदर आई है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ और भी कुछ कुछ भेजा चेक कर। तो मैंने बोला कि हाँ, एक छोटा पैकेट निकला है जिसमें कि टीका है। उन्होंने बोला था कि और भी भेजा है, उन्हें राइस भी भेजा था कुछ छोटा पैकेट। तो मैंने बोला कि देखता हूँ मैं, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा, तो मैं और दूसरे पैकेट देखने लगा कि कहीं और किसी और पार्सल में ना आ गया हो। तो मैंने देखा तो मेरी नजर गई एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू एक लेटर आया हुआ था मेरे नाम के अगेंस्ट। तो मैंने जल्दी से खोला तो उसमें बड़े लेटर्स में लिखा था कि बायो सिक्योरिटी एक्ट, और उसमें ये भी मेंशन था कि जो आपका कोरियर आया है उसमें उन लोगों ने 5 grams ऑफ राइस बायो सिक्योरिटी डिस्ट्रक्शन के लिए भेज दिया था, क्योंकि इट्स अ रिस्क फॉर ऑस्ट्रेलियन लैंड। तो बस उसी में फिर, और उसमें ये भी मेंशन था कि अगर कंटिन्यू हुआ और तुम्हारे एड्रेस पे अगर फिर से यही कंटिन्यूअस आते रहे ऐसे पार्सल्स, तो फिर फाइन और उसके साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो मेरे लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मैंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया कि भाई बाकी लोग भी अवेयर हो जाएं कि जो मेरे साथ हुआ।
जी, और अंकुर, आपको ये राखी समय पे मिली और कैसे भेजी गई थी? आपकी जो सिस्टर है उन्होंने ये राखी आपको कैसे भेजी, नॉर्मल पोस्ट से या कुरियर से?
मेरी दीदी को पता था कि बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए उनने इस बार फ्लाइट पोस्ट से भेजा था, जिससे कि डायरेक्ट कुछ लाइक 1 week में ही डिलीवर हो जाए।
जी, और इससे पहले भी आपको राखी भेजी गई होगी, लेकिन क्या ये लेटर आपको पहली बार मिला है, ये एक्सपीरियंस आपका पहली बार हुआ है?
हाँ जी, हाँ जी, बहुत लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, इसलिए थोड़ा सा डर गया था मैं।
तो क्या आपको इन नियमों के बारे में पहली बार पता चला है?
बिल्कुल आइडिया ही नहीं था मुझे इस बारे में, मुझे ही नहीं पता था, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। इंडिया में मोस्टली 90% लोगों को ये सब नहीं पता।
तो जब आपने ये वार्निंग लेटर देखी तो आपका क्या रिएक्शन रहा?
मतलब मैं तो शॉक में था, मैंने अराउंड 2 से 3 बार पूरा लेटर पढ़ा कि नहीं शायद कुछ गलती हुई है और मतलब गलती से आ गया होगा। तो मैं तो बहुत शॉक में था कि मतलब आगे से कुछ गलती ना हो ऐसी, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा था उसे 2-3 बार।
भारत में इतनी जानकारी ऑस्ट्रेलियन बायोसिक्योरिटी लॉज के बारे में नहीं है लोगों को, तो किस तरह से ऑस्ट्रेलियन और इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी वहाँ पे रह रही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता सकें कि क्या ऑस्ट्रेलियाई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? जब भी वो कोई इस तरह का पार्सल भेजते हैं या कोई चीज भेजते हैं वहां से?
तो आई थिंक इट इज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, जो चीजें हम इंडिया से मंगवाते हैं या फिर हमें कोई सेंड करता है, उनके रूल्स समझना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So everything like what is allowed and what is not, it's already available on biosecurity website, jo bhi jo mujhe abhi pata chala hai. So uske according hi hum awareness phaila sakte hain ki sabko pata rahe.
और अपने इस अनुभव के बाद आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, उन सदस्यों को क्या बोलना चाहते हैं जो भारत से अपने प्रियजनों को, भाइयों को, यहाँ पर अपने जो लोग रहते हैं उनको पार्सल या राखी भेजना चाहते हैं?
मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने या तो बायो सिक्योरिटी वेबसाइट पे आप देखिए कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, और उसके अकॉर्डिंग आप सेंड कर सकते हैं. और अगर आपको सेंड करना ही है जैसे कि राइस हो गया, टीका हो गया, तो फिर किसी ऑस्ट्रेलियन लोकल बिजनेस या फिर मतलब जो मेलबर्न में है, सिडनी में है, उन लोग से आप ऑर्डर करके भिजवा सकते हैं, विच इज वेरी मच ईजी टू डू दैट.
बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए. हम आशा करते हैं कि आप रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाएं और ये अनुभव आपकी खुशियों और उत्सव के माहौल को फीका ना पड़ने दे.
नहीं नहीं, फीलिंग तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी और वही रहेगी सेम. मतलब वीडियो कॉल में भी मतलब राखी तो डिलीवर हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो राखी तो सेलिब्रेट वैसे ही करेंगे. बस एक एक्सपीरियंस है जो कि नया था मेरे लिए, जो कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा.
बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी. हमारे साथ डॉक्टर अजय निरंजन जो ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री के साथ कार्यरत है, उनसे जुड़ेंगे. SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय. सबसे पहले हमें अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, वो क्या काम करता है और आप उसमें क्या भूमिका निभाते हैं?
जी नताशा, मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्रीज में कार्यरत हूँ, और मैं जिस विभाग में हूँ वो है एनवायरमेंटल बायोसिक्योरिटी. सो ऑफिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन चीफ एनवायरमेंट बायोसिक्योरिटी ऑफिस से काम करता हूँ. इसके पहले मैंने बायोसिक्योरिटी ऑस्ट्रेलिया में काम किया है काफी सालों तक, और हमारा काम बेसिकली रिलेटेड है, एज अ साइंटिस्ट आई हैव बीन लुकिंग एट द पेस्ट एंड डिसीज रिस्क एनालिसिस, और ये सारा टॉप काम करते हैं. तो हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हार्मफुल पेस्ट एंड डिसीज से प्रोटेक्ट करने कर कैसे करें, और क्योंकि हम लोग एक यूनिक आइलैंड पे रहते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो यहाँ का एनवायरमेंट और इकोसिस्टम है वो काफी यूनिक है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो इस वजह से हमारी ज्योग्राफिक आइसोलेशन में हमें दुनिया के कई पेस्ट और डिसीज से प्रोटेक्ट किया है, और लेकिन इसी वजह से हमारा एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज नए पेस्ट और डिसीजेस को लेके पर्टिकुलरली वल्नरेबल हो सकता है, और इसी वजह से ये हम काम हम करते हैं ताकि हमारे कंट्रीज को दूसरे कंट्रीज से आने वाले पेस्ट और डिसीजेस से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते, और यहाँ के एग्रीकल्चर एनवायरमेंट और कम्युनिटीज पर कोई सीरियस इम्पैक्ट ना डाल सके.
यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी आपके विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. तो ये बताएं डॉक्टर अजय की जो राखी पार्सल्स आते हैं भारत से, उनमें लोग बहुत सी चीज़ें भेजते हैं राखी के साथ, कुमकुम भेजते हैं, टर्मरिक भेजते हैं, ग्रेन ऑफ राइस का एक छोटा सा पैकेट जो तिलक के साथ यूज़ किया जाता है वो भेजते हैं, तो सबसे बड़े रिस्क क्या जुड़े हैं राखी पार्सल के साथ?
और सबसे पहले तो मैं सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि राखी हम सबके लिए, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस के लिए एक इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है
जी,
और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग फेस्टिवल एंजॉय करें, लेकिन साथ ही ऑस्ट्रेलिया को हार्मफुल पेस्ट और डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करें. बहुत सारे जो मेन रिस्क होते हैं वो होते हैं फूड या प्लांट मटेरियल या एनिमल प्रोडक्ट्स वाले गिफ्ट, जैसे कि राइस है या ग्रेन्स है, जो रोली या रोली चावल जो हम लोग भेजते हैं राखी के साथ, या मिठाई या ड्राई फ्रूट्स जो भेजते हैं, मिल्क कंटेनिंग मिठाई, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, टी और हर्ब्स, और ग्रेन्स और पल्सेस जैसे राइस, व्हीट, लेंटिल्स, चिकपीज और बीन्स, सभी के साथ कुछ रिस्क अवेलेबल है, रिस्क होती है, और इसीलिए हम लोग उसको चेक करते हैं. जनरली एक अंडरस्टैंडिंग और कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ लीजिए कि कमर्शियली पैक्ड और सील्ड आइटम्स अगर हम भेज रहे हैं इंडिया से तो वो एक्सेप्टेबल है, या फिर जो चीजें यहाँ पे उपलब्ध अवेलेबल है हमारे लिए, जैसे कि मिठाइयाँ है या जो पैक्ड मिठाइयाँ और सब हमको इंडियन शॉप्स में, ग्रोसरी शॉप्स में मिलती है, अगर हमको यहाँ मिल रही है तो वहाँ से भी हम लोग भेज सकते हैं। लेकिन वो दो डिफरेंट सिनेरियोज है और ये एक जनरली मिसकॉन्सेप्ट है। और ये भी एक है कि छोटा सा पैकेट है, जैसे रोली चावल होता है, छोटे से कुछ दाने होते हैं, वो हम लोग भेज देते कि इससे क्या रिस्क हो सकती है भाई। तो वो लेकिन उसमें काफी सारी, जैसे राइस के साथ पर्टिकुलरली खापरा बीटल या फिर वायरसेस के रिस्क होती है जो जनरल पब्लिक में नहीं पता होती है, और वो भेज देते हैं अनजाने में।
डॉक्टर अजय, किसी चीज को लेकर अगर हम अनश्योर हैं कि ये अलाउड है कि नहीं है, कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्लियरली वेबसाइट पे बताई गई हैं कि ये नहीं भेजी जाएं, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर हम श्योर नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
जनरली तो हम, ये सिंपल मैसेज है आज का भी हमारा, कि जो है गिफ्ट भेजने से पहले चेक करें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या अलाउड है
जी।
और आप खुद ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो भी ये तो भी रिक्वायर्ड आइटम्स को डिक्लेयर करें, बट जनरली चेक बिफोर यू सेंड एंड डिक्लेयर व्हेन यू अराइव। तो बेसिकली हमारी जो बायकॉन का सिस्टम है, बायोसिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऐप है, आप उस पर जा सकते हैं और वहां पर सो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, आप वो चेक करें और अगर आपको डाउट हो तो आप ना भेजें जहाँ तक हो सके, कि जनरल फूड मटेरियल, प्लांट मटेरियल या एनिमल प्रोडक्ट जैसी चीजें अवॉइड करें भेजने से पहले। और हो सके तो आप अपने ओवरसीज के फैमिलीज और फ्रेंड्स से भी ये बात कर ले कि बिफोर भेजने से पहले, ये भेजने से पहले चेक करें क्या अलाउड है क्या नहीं है।
तो क्या ये नियम समय समय पर बदल दिए जाते हैं? क्या इनमें कोई बदलाव, हर साल नया बदलाव लाया जाता है?
नहीं, ये तो कुछ सालों से चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग रिस्क असेस करते रहते हैं, डिपार्टमेंट असेसमेंट करते रहती है साथ में, तो उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बायकॉन जो हमारा ऐप है उस पर आप जाके देखें कि जो करंट रिक्वायरमेंट है वो सही है या नहीं है, या उसमें आप जो भी भेजना चाहते हैं वो उसमें अलाउड है या नहीं है।
तो उस पार्सल के साथ क्या किया जाता है जिसमें वो वस्तु है जो अलाउड नहीं है, जिसकी अनुमति ऑस्ट्रेलिया में नहीं दी गई है, और वो वस्तु अगर उस पार्सल में हो तो उस पार्सल के साथ क्या किया जाता है?
जनरली ऐसे है नताशा कि जब भी कोई पार्सल आता है हमारे यहाँ पे तो उसे एक सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से जाता है, जनरली इंटरनेशनल बायोसिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरता है, जिसमें कि बायोसिक्योरिटी ऑफिसर खुद मैन्युअली चेक करते हैं, असेस करते हैं, या फिर एक्सरे मशीन से भी जाता है, या फिर डिटेक्टर डॉग्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो उसके बाद अगर प्रोहिबिटेड या अनडिक्लेयर्ड आइटम है, जैसे सीड्स है या प्लांट मटेरियल या फूड या एनिमल प्रोडक्ट्स है, और वो अगर इंटरसेप्ट होते हैं तो डिपार्टमेंट उसको या तो डिस्ट्रॉय कर देती है या फिर आपको एक वार्निंग से दी जा सकती है।
यानी पार्सल प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी जा सकती है?
मिल सकती है, अगर इंटरसेप्शन होता है तो डिपार्टमेंट वार्निंग या सीजर लेटर इश्यू कर सकता है। वार्निंग लेटर या फॉर्मल नोटिस हो सकता है कि पार्सल की कंटेंट्स ने ऑस्ट्रेलियन बायोसिक्योरिटी लॉज को ब्रीच किया है।
मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सिडनी में रहने वाले एक व्यक्ति से हमने बात की थी जिसने इसी तरह की वार्निंग लेटर मिली थी।
देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल केस के स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जनरली तो है हमारा जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरनेशनल मेल बायोसिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरता है, और अगर प्रोहिबिटेड आइटम मिलता है या अनडिक्लेयर्ड मटेरियल उसमें अगर देखा जाता है तो डिपार्टमेंट वार्निंग इशू कर सकता है। और जैसे कहा कि वार्निंग फॉर्मल नोटिस हो सकती है या पार्सल के कंटेंट्स को लेकर में अगर बायोसिक्योरिटी लॉ ब्रीच किया है तो उसे बताया जाता है। एक्शन और सर्कमस्टेंसेस सीरियसनेस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम या लो लेवल मेल इंफ्रैक्शन में वार्निंग्स और गुड्स के डिस्ट्रक्शन हो सकती है इमीडिएट फाइन के बजाय। रिपीट या सीरियस कमर्शियल ब्रीचेस अगर होती है, जैसे फॉर्मल इंफ्रिंजमेंट नोटिसेस या प्रोसिक्यूशन ट्रिगर कर सकते हैं। अगर सिस्टमिक नॉन कंप्लायंस या कमर्शियल इंटेंट या डेलिबरेट कंसीलमेंट का एविडेंस हो तो स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट एक्शन इंक्लूडिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल हो सकता है। सीवियर या फ्रॉडुलेंट पैटर्न्स में CDPP यानी कि कॉमनवेल्थ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी रिफर किया जा सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल एडवाइस सिंपल है कि ओवरसीज फैमिलीज और फ्रेंड्स को पहले ये बता दे कि क्या भेजना अलाउड है और क्या रिक्वायरमेंट चेक करें प्लीज। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग ऑस्ट्रेलियन फैमिली और फ्रेंड्स से पहले भेजने से पहले बात कर ले, इससे सेफली अराइव करने और बॉर्डर पर डिले या इंटरसेप्शन अवॉइड करने में हेल्प हो सकती है।
जी, वो डॉक्टर अजय उन वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं विस्तार में जो परमिटेड हैं और जो परमिटेड नहीं है? جیسے مہندی، کمکم، ہلدی؟
اگر اسپیسیفکلی آپ مہندی کا ایگزامپل لے تو مہندی ایک پلانٹ پروڈکٹ ہے،
جی
اس میں رسک ہو سکتی ہے. پلس اگر ہم لوگ یہی بول رہے ہیں کہ بول سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ جو چیزیں ملتی ہے تو آپ اس کو
یہیں سے لیں،
یہیں سے لے لیں،
جی
کیونکہ میں کم رسک ہے اور ہو سکتا ہے کہ مطلب جو چیزیں الاؤڈ ہے اس میں وہاں سے بیچ کے اس میں رسک بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے خرید لیں.
جی آخری سوال ڈاکٹر اجے کی، جو بایو سیکیورٹیز لا ہیں، کیا وہ جو پارسلز آسٹریلیا پوسٹ سے آتے ہیں یا کوریئر کمپنی سے آتے ہیں یا پرائیویٹ شپنگ سروسز سے آتے ہیں، ان سب کے لیے الگ الگ رولز ہیں کہ ایک ہی رول ہے سب کا؟
سبھی کے لیے ایک ہی رول ہے. آسٹریلیا کے جو بھی انٹرنیشنل میل سینٹرز ہوتے ہیں یا تو جس سسٹم سے بھی آ رہے ہیں، جس وے سے بھی آ رہے ہیں، وہ سارے ایکس رے اسکریننگ سے جاتے ہیں، وہ سارے ڈیٹیکٹڈ ڈاگز اور میل اور مینوئل انسپیکشن جیسے میتھڈ سے گزرتے ہیں. سو سمپل ہے کہ بیسیکلی آپ ایک ہی رول رکھیے کہ چیک کیجیے ہارمفل پیسٹ اور ڈیزیز کو آسٹریلیا میں انٹر ہونے سے روکیے، اور اس کے لیے آپ اگر ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے رشتے داروں کو بتائیے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. سو دیٹ از دا سمپل میسج.
بہت بہت دھنیواد ڈاکٹر اجے ہم سے آج جڑنے کے لیے اور ہمیں یہ مہتوپورن جانکاری دینے کے لیے.
تھینک یو نتاشا.
آپ کو بتا دیں آسٹریلیا کے بایو سیکیورٹی نیم سخت ہیں. پارسل بھیجنے سے پہلے پرتیبندھت اور گھوشت کی جانے والی وستوؤں کی موجودہ جانکاری سمبندھت آسٹریلیائی سرکاری وبھاگ کی آدھیکارک ویب سائٹ سے ضرور جانچ لیں. اس رپورٹ کو پرستت کیا ہے نتاشا کال نے ایس پی ایس ہندی کے لیے.
ایس بی ایس ریڈیو سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کا دھنیواد. ہمارا پورا کاریکرم آپ کیسے سنیں اس کے لیے sbs.com.au/hindi پر جائیں.